ओम शांति। आप सभी बरसात के इन रिमझिम फुहारों के बीच पांडव भवन की भट्टी का बड़ा अच्छा आनंद ले रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे बाहर सूक्ष्म मथन है। बरसातों की भट्टी यहाँ की प्रसिद्ध है, तो 3 दिन में आपने खूब खजाने जमा कर लिए होंगे, शांति की शक्ति जमा हो गई। सबने अच्छी तरह से तपस्या की, अमृत वेले से रात तक एक बाबा ही संसार है उसका अनुभव किया होगा। मधुबन के लिए कहते हैं, कण कण से तेरी याद आती है, जिधर से गुजरेंगे। बाबा यहाँ पर पत्र लिखते थे, बाबा यहाँ बच्चों से मिलते थे, बाबा यहाँ बैडमिंटन खेलते थे, बाबा यहाँ मुरली सुनाते थे, बाबा 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 सब घूम लिया ना, देख लिया। और यही वास्तव में सहज याद है, सहज योग है। और जब हम सहज योगी बन जाते हैं तो शांति की शक्ति अपने आप जमा हो जाती है। उसको जमा करने के लिए अधिक मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहने वाली है, शांति के सागर की संतान है, शांत आत्मा का स्वधर्म है। बाबा ने एक बार कहा था, तुम बच्चे शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाते हो तो चारों तरफ अपने आप शांति के प्रकंपन फैलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतने सब अगर एक संकल्प में स्थिर हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, तो उसके प्रकंपन कितने दूर दूर तक जाएंगे। जैसे कोई अच्छे संत तपस्वी आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो पूरे वायुमंडल में दूर दूर सन्नाटा हो जाता है। और हम सब इस शरीर से अलग होते हैं, देह मान से अलग होते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, शांति की शक्ति फैलने लगती है। वर्तमान समय चारों तरफ हम सब जानते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं, कितनी हलचल का वातावरण है। प्रकृति एक तरफ अपना खेल कर रही है, दूसरी तरफ देश, एक देश दूसरे देश को आंख दिखा रहा है, ये करेंगे ऐसा करेंगे, तुम ये करेगा तो हम ये बॉम्ब छाड़ा छोड़ देंगे, डरा रहे हैं सब एक दूसरे को। और हम बच्चे तो निश्चिंत निर्भय बैठे हैं। कोई हलचल है आपके अंदर? क्यों नहीं हलचल है? बाबा साथ है ऐसे, क्योंकि हम सबको बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है, एकदर्शी हम नहीं है। अगर सिर्फ वर्तमान को देखते हैं तो लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन जानते हैं कल क्या होने वाला है। कलयुग को जाना है तो हलचल तो होगी ही, ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी दुनिया चली जाएगी। लेकिन आने वाली स्वर्णिम दुनिया, जिसके लिए हम सबको बाबा ने निमित्त बनाया है, उसकी स्थापना का कार्य करने वाले किसी भी दृश्य से, सीन से घबराते नहीं, डरते नहीं है, निश्चिंत है, निर्भय है। तो आप सभी ने साइलेंस की शक्ति जमा की है और इसका प्रयोग करते रहना, क्योंकि जब कोई चीज होती है तो उसको यूज किया जाता है, ऐसे रखे रखे भी खराब हो जाती है। तो जितने आत्मा के निजी गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, बाबा से जब हम कनेक्ट होते हैं, पावर हाउस से जब लिंक हमारी जुट जाती है तो ये सब शक्तियाँ सब गुण भरपूर हो जाते हैं। और जहाँ भरपूरता है, आत्मा बिल्कुल उस स्थिति में स्थित है, तो उसके वाइब्रेशन अपने आप सेवा करते हैं। जहाँ पर भी अशांत होगी, जहाँ पर लोग दुखी होके पुकार रहे होंगे, ये प्रकंपन उनको शांति देंगे, सहारा देंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है। आज एक पावरफुल बल्ब एक जगह जलता है तो कहीं भी दूर दूर तक उसकी रोशनी पहुंच जाती है, अंधेरा दूर होने लगता है। लाइट भी जाती है, और अगर बहुत शक्तिशाली बल्ब है तो उसकी शक्तियां भी जाती है, पावर भी जाती है। तो बाबा ने हम सब बच्चों को इस समय लाइट हाउस और माइट हाउस बनाया है। लाइट माइट हाउस बन करके ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप स्थिति में जब स्थित होते हैं तो उसके प्रकंपन, उसके वातावरण में वाइब्रेशंस अपने आप फैलने लगते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए शांति के सागर की स्मृति में बैठ जाओ। बस हम हमेशा कहते हैं तीन प्रकार की साइलेंस है। अगर इन तीनों का अनुभव हमने कर लिया तो बाहर की हलचल से हम पहले अलग हो जाएंगे। पहली साइलेंस है डीप साइलेंस, जैसे सागर के तले में चले जाओ। बाबा की तीन विशेषताओं के आधार से मैं तीन प्रकार की साइलेंस आपके आगे रख रहा हूं। बाबा को कहते हैं, एक है ज्ञान सूर्य, एक है ज्ञान सागर। सूर्य और सागर में अंतर है, कितना बड़ा अंतर है, लेकिन कनेक्शन बहुत गहरा है। अगर सूर्य और सागर ये दोनों न हो तो मानव सृष्टि रह नहीं सकती, जल ही समाप्त हो जाएगा, जल ही नहीं मिलेगा। जब सूर्य की तेज किरणें सागर पर आती हैं तो सागर का पानी उड़ता है और खारापन समाप्त करके हमको पीने के लिए मीठा पानी मिलता है। तो बाबा ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान सागर भी है, और वृक्ष का वृक्षपति बीज भी है। इसको हम ऐसे कहते हैं, सन, ओशन और सीड। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सीड है, वृक्ष पति है, पूरा वृक्ष उसके ऊपर आधारित है, चैतन्य बीज है। कई बार बाबा कहते हैं अगर वो बीज भी चैतन्य होता तो बताता ये वृक्ष मेरे से कैसे निकला, लेकिन वो जड़ है इसलिए बता नहीं पाता। लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटा सा बीज मिट्टी के साथ मिक्स होता है तो उसमें से पौधा निकलता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही बाबा ने अपना परिचय दिया, बच्चे इस सृष्टि का मनुष्य रूपी वृक्ष का मैं बीज हूँ, और इस बीज से जो झाड़ उत्पन्न हुआ उसमें पहले तना है संगम योगी तपस्वी आत्माओं के रूप में, और उस तने से फिर जब वृक्ष निकलता है तो सतयुग त्रेता आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वो आदि है, सृष्टि का आदि काल है, और उसके बाद वृद्धि होती, जब द्वापर युग आता है तो अन्य धर्म स्थापक आते, लेकिन शाखा जड़ एक ही है, बीज एक ही है, और इसी तने से इसी बीज से फिर अनेक वृक्ष डालियां निकलती हैं। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियंस और धर्म टाल टालियां छोटे छोटे जो भी निकलते, ये बड़ा वंडरफुल वृक्ष है कि डाली से डाली नहीं निकलती, तने से ही सब डालियां निकलती। तो जितनी वंशावली है वो किसकी है, कौन है पूर्वज? आप सब समझते हो हम सब पूर्वज आत्माएं हैं। हमारा ब्रह्मा बाबा इस वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा सिर्फ गॉड फादर है, आत्माओं का पिता है। लेकिन जितने धर्म निकले, जितने धर्म पिताएं आए, उन सब पिताओं का भी पिता ब्रह्मा बाबा साकारी पिता है और हम सब उनके साथी बच्चे हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अपने पूर्वज स्वरूप के समान में रहो, कि हम पूरे वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हैं और हमें इस पूरे वृक्ष की पालना करनी है, केवल एक दो की नहीं, एक शाखा की नहीं, केवल हम हिंदू धर्म के नहीं हैं। जितनी भी धर्म आत्माएं अपने अपने धर्म स्थापन किए हैं, उन सबको शक्ति देने वाली, सकाश देने वाली, सहयोग देने वाली, सूक्ष्म रूप में मदद करने वाली आत्मा कौन? बाबा ने अपने बच्चों को बनाया है। इसलिए जब हम अपने शांत स्वधर्म में स्थित होते हैं तो पूरे वृक्ष को शांति की शक्ति मिलती है, अपने आप पहुंचती है। बीज कहीं वृक्ष को जल देने नहीं जाता, शक्ति नहीं देने जाता, लेकिन बीज से पूरे वृक्ष को मिल रहा है। तो हम सब इस समय पूर्वज आत्माएं जब अपने बीज रूप बाबा को देखते याद करते हैं, तो बीज रूप की स्मृति से परमधाम की स्मृति आती है, डेड साइलेंस, और कोई हलचल नहीं, संकल्प भी शांत हो जाते हैं। परमधाम घर की शांति का अनुभव किया है ना? न किया हो तो अभी भी कर लेना। जहां कोई हलचल नहीं, कहते हैं भक्त लोग कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, समा जाती है। लेकिन परमात्मा की भी यथार्थ पहचान न होने के कारण वो तो कह देते ब्रह्म में ही हम समा जाते, ब्रह्म घर, जिस घर में रहने वाले हम बच्चे, जिस घर में रहने वाला पिता परमात्मा, उसको भूल करके घर का इतना महत्व कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म में ही हम खो जाएंगे, समा जाएंगे। बाबा कहते समा जाओगे तो समाप्त हो जाओगे। जब आत्मा अनादि अविनाशी है तो समाएगी कैसे? लेकिन उसके शक्तियों में, प्यार में, स्नेह में, शांति के सागर में जैसे समा गए जाकर के, वो है डेड साइलेंस। संकल्प भी शांत है, हलचल के नहीं है। जब समय आता है ड्रामा के चक्र में, तब आत्मा ऊपर से ऑटोमेटिक, कोई भेजता नहीं है, समय अनुसार अवतरित हो जाती, जन्म लेने आ जाती। फिर आता है जब पार्ट बजाते बजाते आत्मा इस सृष्टि पर अशांति फैलने लगती है, तो बाबा कहते बच्चे मैं शांति का सागर हूं, आओ मेरे तले में चले जाओ। डीप साइलेंस, सागर के तले में, लहरों में लहराना तो बहुत सहज है, लेकिन उसमें भी कला चाहिए। कभी सागर में लहराया? यूपी वालों तो नहीं लहराया होगा, वहां तो नदियां ही हैं, सागर कहाँ है? लेकिन गए होंगे, कई घाट ऐसे हैं, कई घूमने जाते हैं तो सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करके आते हैं। उसमें भी तैरने की कला चाहिए, नहीं तो खींच ले जाता अंदर। तो एक है सागर में लहराना और दूसरा है सागर के गहरे तले में चले जाना, डुबकी लगा लेना। और डुबकी लगाने के लिए उसे बंद करना पड़ता है, नाक भी बंद हो, कान भी बंद हो, आंखें भी बंद हो, न देखना है, न सुनना है, न सोचना है, शांत होकर के चले जाओ, डीप साइलेंस। फिर तीसरी है स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस, डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस का अनुभव कब होता? जब ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे ऐसे अशरीरी होकर के लेट जाओ। सागर में जैसे विदेशी लोगों को कभी कभी शायद देखा होगा, आते हैं सागर के किनारे, पहले सागर में खूब नहाते हैं और नहाने के बाद सूर्य की किरणों के नीचे उसी रेत पर लेट जाते हैं अशरीरी बन करके, और वो किरणें आती हैं उस शरीर की, उनकी चमड़ी जो होती है ना कच्ची, वो पक्की हो जाती, मजबूत हो जाती। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे कभी कभी डीप साइलेंस में जाओ और फिर आ करके मेरे किरणों के नीचे लेट जाओ अशरीरी बन करके। जो भी कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, वो सब मैं किरणों से समाप्त कर दूंगा। किरणों से ऑपरेशन होता है ना, आजकल लेजर किरणों से ऑपरेशन कर देते हैं। बाबा की वो शक्तिशाली पवित्र किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें, जब हम अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के उनको कैच कर लेते हैं तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आ जाता है। तो डीप साइलेंस का अनुभव करो, स्वीट साइलेंस का अनुभव करो, डेड साइलेंस का अनुभव करो। और ये अनुभव कराने वाली इस विद्यालय में जहां आप आज पहुंचे हैं, जुलाई मास है इसलिए मुझे कहा गया हमारी दीदी का मास है, दीदी मनमोहिनी, जो डीप साइलेंस का बहुत गहरा अनुभव करती थी और ऐसा कराती थी। एक घंटा जब योग कराती थी ऐसे लगता था इस संसार में है ही नहीं, खो गई, हिलना डुलना एकदम मूर्ति की तरह से बैठी, बहुत डीप साइलेंस में ले जाती थी। और दीदी जी, दीदी मनमोहिनी को देखने वाले कोई बैठे हैं? है एक है दो, उषा बहन तो देखिए ना, दीदी मनमोहिनी के साथ तो थी ना, और कौन है? हाँ ये बैठे हैं, और बस तीन चार, बस सुनीता बहन नहीं देखा। 83 में दीदी अव्यक्त हुई, ओम शांति भवन बना, निर्माण पूरा हुआ और फरवरी में उद्घाटन हुआ, जुलाई 28 जुलाई को दीदी अव्यक्त हो गई। दीदी का प्रशासन, उनके नियम मर्यादाएं, उनका एक अलौकिक माँ का रूप, लॉ और ला का बहुत अच्छा बैलेंस। और बाबा ने दीदी को क्यों यहाँ रखा? दीदी वैसे तो दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर थी, दीदी के ही स्टूडेंट जगदीश भाई जी थे, दीदी के साथ कुंज दादी थी, और कुंज दादी कोर्स कराती थी, वो तो बहुत होशियार थी बोलने में, और दीदी उनको योग कराती थी। तो दीदी की पालना से जगदीश भाई जैसे रतन निकले। लेकिन जब मम्मा अव्यक्त हुई 24 जून 1965 को, तो बाबा ने दीदी को दिल्ली से बुला करके मम्मा की ही चारपाई पर, मम्मा के ही कमरे में रखा। ये जो ऑफिस के साथ कमरा है, अभी तो ऑफिस ही बना है, वही कमरा मम्मा का कमरा था, बाबा के कमरे के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। तो दीदी का जो एक बाबा से अटूट प्यार था, वो ऐसा प्यार था साकार से, दीदी को कहते थे, उनका लौकिक नाम था गोपी, बाबा ने पारलौकिक नाम उनको मनमोहिनी दीदी दिया। तो मनमोहिनी दीदी यज्ञ की आधार स्तंभ बनी मम्मा के तुरंत बाद, इतने बड़े ब्रह्मा कुमारी संगठन को चलाने की सेवा बाबा ने उनको सौंप दी। और जब मैं आया हूँ 71 में, तो दीदी ही मुख्य थी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी अधिकतर बाहर की सेवाओं में रहती थी, कहीं प्रवचन करना है, कोई प्रोग्राम है, कोई कुछ है, तो दादी ही स्पीकर थी, दीदी स्पीच नहीं करती थी। दीदी लौकिक में कुछ पढ़ी हुई नहीं थी, बचपन में ही छोटेपन में शादी हो गई, और शादी होने के बाद बाबा मिला और एक धक से एक झाटकों की तरह अपनी लौकिक माँ और बहन को लेके समर्पित हो गई। समर्पित तो हुई लेकिन दो परिवार डिस्टर्ब हो गए, एक उनका लौकिक परिवार और एक उनका शादी वाला परिवार, ससुराल वाला। और इतना ज्यादा हंगामा परिवार ने किया कि ऐसा कैसे है, और ये सब बहुत पैसे वाले धनाढ्य लोग थे, सिंध में नामी ग्रामी। उनके भाई का ये जस लोक हॉस्पिटल बॉम्बे में। लेकिन दीदी का जो निश्चय था, जो बाबा के प्यार था, भावनाएं थी, उन्होंने कोई चीज की परवाह नहीं की। मम्मी को भी लेके आ गई, मम्मी का नाम था, बाबा ने रखा था क्वीन मदर, बिल्कुल क्वीन जैसे राजाई संस्कार थे, बहुत मुस्कुराता हुआ हर्षित चेहरा, और इतना स्लो प्यार देना बोलना जैसे माँ बच्चे की पालना करती, और दीदी उसको ऐसे कहती जैसे कोई लौकिक में बोले एक क्वीन जाओ जाओ ये पांडवों के गोपों के कमरे में जाओ, देखो ये कैसे रहते हैं, इनके बिस्तर कैसे हैं, इनके कमरे कैसे हैं, ये अपने कपड़े ठीक रखते हैं या नहीं। वो हम लोगों को उस समय प्रेस तो होने नहीं देते थे, प्रेस नहीं थी मधुबन में, ऐसे कहती थी ये जब धो के आते हैं तो थोड़ा सा पानी लगा के गीला करके तय लगाओ और अपनी चारपाई में बिछा दो नीचे, ऊपर सो जाओ सवेरे तक प्रेस हो जाएगी। बड़ी अच्छी प्रेस हो जाती। तो वही हम लोगों का धंधा था, लेकिन तय करना भी तो आना चाहिए ना, हम छोटे छोटे आए 15-16 साल के, क्या पता सब। तो क्वीन मदर आके उसको सिखाती थी ऐसे तय करो, ऐसे लगाओ, ये बटन टूट गई है लाओ मैं लगा के देती हूँ, पूरी माँ की भाषा देती थी। कुछ भी हो तो क्वीन मदर और दीदी। वैसे बाबा ने जब भिगरी पाठ शुरू हुआ ना तो इनके परिवार वाले समझते थे अरे इतने घरों में पली, राजाई ठाट में रही और कहाँ पर माउंट आबू में आ गए, सब बीमार हो गए हैं ये है। तो उनके परिवार वालों ने दीदी को और हमारी रतनमयी दादी की माँ को, देवी माता और क्वीन मदर को बॉम्बे में घर लेके दिया, एक एक कमरा अच्छा घर लिया। अभी भी जो रतनमयी दादी का कमरा मकान है वहाँ बॉम्बे में, वहाँ पर ही अभी वर्ड रिन्यूअल का अकाउंट ऑफिस है। दीदी का भी शायद यूज हो रहा है कुलाबा में। तो उन्होंने लेके दिया था तो मम्मी के कारण दीदी सील को भेज देती, सील इंदिरा जाओ साथ रहो जा करके। तो वो बॉम्बे में घर था तो जब दीदी को यहाँ रखा तो उनके नियम मर्यादाएं, वो इतनी पावरफुल आत्मा थी, स्कूल नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ाने के निमित्त बन गई। इतने अच्छे अच्छे मुरली के प्रश्न निकालती थी, ये जो वरदान मुरली के प्रश्न उत्तर आते हैं, क्योंकि जब मुझे मैंने ऐसे अपनी इच्छा यहाँ जाहिर की मधुबन में मैं टाइप सीखूं, क्योंकि मैं यूपी से आया था, हमने कहा टाइप सीख लूं हिंदी की, तो पहले पहले प्रश्न तुम टाइप सीखेगा, दीदी ने कहा टाइप सीखने वाले को सिंधी सीखनी पड़ती है, सिंधी के बिना उसके टाइप का कोई वैल्यू नहीं। तो मैंने कहा मैं सिंधी कैसे सीखूंगा, तो हमारे विश्वरतन दादा रहते थे उनको पता चला, कहते सिंधी क्या है लाओ मैं सिखा देता, तुम आया करो मेरे पास। तो उन्होंने मुझे 7-8 दिन में सिंधी लिखना पढ़ना सिखा दिया। जब सिंधी सीख लिया तो टाइप वाले ने टाइप सिखाना शुरू कर दिया। अब टाइप सीख करके मैं दीदी बॉम्बे गई थी कुछ हॉस्पिटल के कुछ इसके चेकिंग के लिए, वापस आई दिखा ये तो टाइप कर रहा है, मेरे को बुलाया तुम टाइप क्यों सीखना शुरू कर दिया, तुम सिंधी कहाँ सीखा। तो मैं सीख गया सिंधी, इतनी जल्दी सीख गया तुम सिंधी, आओ इधर मेरे कमरे में। अपने कमरे में लेके मेरे को अपनी डायरी दिखाई और डायरी देख के एक शब्द भी मैं पढ़ नहीं पाया। दीदी ये सिंधी नहीं है, कहती क्या है, क्योंकि दीदी पढ़ी नहीं थी स्कूल की, वो अपनी सिंधी बनाई हुई थी, आधी इंग्लिश आधी हिंदी आधी सिंधी, पता ही नहीं चले ये लिखा क्या है। और कभी कभी दीदी भी नहीं पढ़ पाती थी मैंने क्या लिखा। तो हंसने लगी, कहती है देख बनाना तो इसी से पड़ेगा, सीख लो तुम इसको पढ़ना। तो हमारी कमलमणि दादी दिल्ली वाली जो थी कृष्णा नगर की, वो यहीं रहती थी, तो कहती है मैं तुमको दीदी की राइटिंग सिखा दूंगी पढ़ना। छोटे छोटे थे, दादियां बड़ा प्यार देती थी, जहां बुलाओ आ जाती थी। तो मैं ऑफिस में उनको ले जाता, दादी पढ़ दो मुझे क्या लिखा है, प्रश्न उत्तर बनाती थी तो मैं टाइप कर लेता था। तो ऐसे टाइप करते सीखते और एकदम अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या में कौन नीचे ऊपर हो रहा है, इतना फाउंडेशन पक्का कराया। 2-3 बातें तो कान में मंत्र के रूप में दिया। हाथी कहती है जब हम आए 72 में, 71 में परख लिया था दीदी ने, ये यहाँ के लायक है, बहुत परखने की शक्ति थी। तो दादी को कहती है इससे बात करो, ये यहाँ रहेगा क्या, तो दादी मेरे को इस झूले पर लेके आई, यहाँ है ना झूला पड़ा है बाबा के बगीचे में, तो एक तरफ दादी बैठी एक तरफ मेरे को बिठा लिया। मैं बहुत डरता था, छोटा तो था, तो कहती नहीं डरो नहीं, तुम मेरे साथ बैठो। तो प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, और प्रश्न जब पूछे तो सब प्रश्नों में मैं फेल हो गया। उम्र कितनी है, मैंने कहा 15 साल। क्लास कौन सा, हमने 9th पढ़ाई का। अरे अभी तो 4-5 साल तो और पढ़ ले भाई, बहुत छोटा है तुम, कम से कम 12वीं तक तो पढ़ लो। फिर और पूछा परिवार में कौन कौन है, तो मैंने बोला हमारे पिताजी 3 भाई हैं, उनका मैं इकलौता बेटा हूँ। 3 भाइयों में अकेला बेटा है। अरे अरे दीदी को क्या हो गया, दीदी तुम्हारे पर नजर कैसे डाली। नहीं संभव नहीं है, तुम जाओ वापस। अरे परिवार वाले तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे मुख से एक ही शब्द निकला, मुझे याद है अभी तक, मैं दादी मेरे पिताजी कहते हैं विनाश होने वाला है, और जब विनाश होने वाला तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो हंसने लगी, कहती अरे भाई जब तक विनाश होगा बाबा मना नहीं करता, जब होगा तब देखना, लेकिन अभी पढ़ लो। और अगर लगे बहुत नहीं मन लगता है तो पिताजी की चिट्ठी लेके आ जाना, इतनी छुट्टी दे दी, चिट्ठी के बिना यहां नहीं आना। बाबा के पास भेज दिया, जाओ बाबा से पूछो जाकर के बाबा क्या कहता है। और बाबा तो उस समय अकेले अकेले आते थे, अकेले मिलते थे, मना अकेले आना मना, अकेले मिलते थे गद्दी पर, यहाँ जो गद्दी पड़ी ना कमरे में, गुलजार दादी बैठ जाती थी, भोग वगैरह नहीं। गुलजार दादी बैठ गई और हमारी रुक्मणी दादी जो दिल्ली की थी ना, गुलजार दादी की मौसी थी, तो वो मिलाने में होती थी और कोई नहीं होता था। जब मिलने के लिए बिठा देती बाबा के सामने तो खुद निकल जाती बाहर, कोई नहीं, बाबा और बच्चा बस, तीसरा नहीं कोई। तो बाबा ने मेरे से जन्म पत्री पूछना शुरू किया, क्या करना, कितने में पढ़ रहे हो, कितनी उम्र, बाबा ने भी पूछा सब। फिर पूछ करके कहता है दादी ने क्या कहा, दादी कहती है अभी तुम छोटा है पढ़ लो। अच्छा दीदी क्या कहती है, बाबा ने पूछा और मैंने जो बाबा वो बोलते थे वैसा ही मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं, जो दादी दीदी कहती है ना सुनो, ठीक है बाबा अपने आप की आस पूरी करेगा। पूरा हो गया, मैं गया 71 हुआ और वो बांग्लादेश वाली लड़ाई चली। और इतनी उस समय अभी नहीं जैसे तो बीच में सायरन बजाते थे, ट्रायल कर रहे थे, उससे भी ज्यादा भयानक डर था। शाम को 6 बजता था तो मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, सब सायरन बजता, सब ब्लैकआउट, कोई लाइट नहीं जला सकता, कोई बाहर नहीं निकाल, पूरी कर्फ्यू जैसा ब्लैकआउट। अब उसमें तो मैंने कहा रे बाबा कहता विनाश विनाश तो शुरू हो गया, अब मैं पढ़ के क्या करूंगा। पक्का हो गया विनाश शुरू हो गया, तो मैंने मुश्किल से हाई स्कूल का पेपर दिया, पिताजी को बोला मुझे तो जाना है मधुबन। और वो तो इतना खुश, अरे भाई हमारे बच्चे सेवा पर लगे और क्या चाहिए। उन्होंने इतना अच्छा लेटर लिख के दिया और मैं आया तो कोयले वाली ट्रेनें थी उस समय, सारे ड्रेस काला, चकल काली और सब कपड़े अपड़े ला करके बिस्तर सहित आया था। और गेट पर मिल गई दादी, सामने ही चक्कर लगा रही, हे तुम आ गया कैसे आया, चिट्ठी दिखाओ। वो चिट्ठी देख के पढ़ के ऐसे नीचे से ऊपर तक देख के कहती अरे तेरे बाप को इतना निश्चय है क्या, उन्होंने ऐसे शब्द लिखे थे कि भगवान इस सृष्टि पर आया है नई दुनिया बनाने के लिए, और उसमें अगर बच्चों को, मेरे बच्चों को सहयोग मिल करने का चांस मिलता है तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। लेकिन इनको तो मैं समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी चांस दे देना, मुझे भी समर्पित करा देना। तो ड्रामा की भावी कहें, दादी ने देखा पढ़ा जी, ताऊ जी बाद का विरोध है, वो तो उस समय तक तो उनका विरोध नहीं था, लेकिन जब मैं मधुबन में रहने लगा तब बहुत विरोध किया, क्योंकि वो समझते थे कि अभी एक ही बेटा है कुलदीपक है, ये भी चला जाएगा तो कुल का क्या होगा। वो खुद कुमार थे लेकिन बहुत भक्ति पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब जानते थे, झाड़ फूंक करने वाले थे। तो उन्होंने बहुत विरोध किया, ऐसा कैसे होगा, ये कौन सा नियम है, घर छोड़ के कैसे जाएगा। फिर उन्होंने सब प्रयोग कर लिए और प्रयोग ऐसा किया जो माँ के ऊपर ही कर दिया। जब उनके पर आया तब 5-6 साल रह गए थे मधुबन में, तो वो शरीर छोड़ गई। अब शरीर छोड़ते ही दादी ने मेरे को देखा, कहती अब तेरे पर बहुत बड़ा पेपर, घर में कोई खाना बनाने वाला ही नहीं, सारा घर संभालने वाली, खेतीबाड़ी का ध्यान रखने वाली, गाय बैल भैंस जो होती है उनको चारा खाने खिलाना माता ही करती सब घर में, अब वही चली गई। तो दादी कहती अब देखना भाई तुमको जाना है, तुम शक्तिशाली बन के जाओ, कैसे छुट्टी मिलेगी। हमने कहा दादी एक संदेश ही दे दो मेरे को, संदेश ही जाके कानपुर से ले लेना, कानपुर में गंगे दादी को बोलेंगे दे देगी। तो मैं एक संदेशी को लेके साथ गया, और चाचा जी वो भी कुमार थे, दीदी हमारी सरोज दीदी हमारे साथ थी, वो तो सेंटर पर ही रहती थी उस समय। हम गए मधुबन से, तो पहले ही ऐसे कहा संदेशी को थोड़ा भोग लगाओ, क्योंकि बहुत माहौल खराब था घर का, ऐसे लगता था कहाँ बहुत भारी होता ना ऐसे, क्योंकि वो सब इविल स्पिरिट्स का सारा प्रभाव था वहाँ। और मैंने शादी के लिए एक लड़की भी रखी थी घर में कि ये आएगा शादी इसकी करके फिर इसको भेजना, ऐसे नहीं भेजना भले जाए, घर संभालने वाला तो कोई चाहिए। और बाबा ने जाते ही दिखा दिया दृश्य, संदेशी को भी दिखाया और चाचा जी को भी अनुभव करा दिया कि देखो ऐसे ऐसे रस्से हैं मोटे मोटे, और इस बच्चे को बांधा जा रहा है, और उस आत्मा को उसने शरीर छोड़ा है उसको भी बांध के रखा है, जहाँ संस्कार किया है वो वहीं पर है, वहां पर बच्चे को नहीं जाना, क्योंकि हमने प्लान बनाया था वहां सब योग करेंगे जाके, ये करेंगे ब्रह्मा भोजन कराएंगे 13-14 दिन माँ का सब करके फिर जाएंगे वापस। और बाबा ने इतना स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया कि 3 दिन के अंदर ही बच्चे को सब कुछ करना है और यहीं एक स्थान पर रहना, कहीं नहीं जाना, तो बाबा इसकी रक्षा करेगा, और 3 दिन के बाद अगर रुकता है तो वो जाने। संदेश आया, मैंने 3 दिन में सब काम समेटा और सब भोजन वोजन गांव वालों को बुला के करा करके, और मैंने कहा मेरी टेलीग्राम आ गई, मैं जा रहा हूँ, उठाया चल गया, बाबा के घर में वापस आ गया। उसके बाद पिताजी को बोला था कि तुम जल्दी से जल्दी समेटो घर को, बाबा कुलदीपक है, घर नहीं बेचना, घर में गीता पाठशाला मम्मा की खुली हुई, खेती नहीं बेचो, ये गाय बैल भैंस और ये दुकानें जो जो बाहर की सामग्री है उन्होंने हमारे लिए इतने जेवर रखे हैं, सोना चांदी रखा है, कपड़े रखे हैं शादी के लिए, बहुत सारी सामग्री माता ने इकट्ठी की थी, भाई सब दान करो, सेवा में लगा दो, बेचना तो बेच दो, जो करना करो, और जब आप हल्के हो जाओ, बिल्कुल लगे कि मेरे को कोई बंधन अभी नहीं है, तब मुझे फोन करना या बताना है, टेलीग्राम करना। बस पहले चाचा जी को बुलाया, यहाँ रख दिया विशाल भवन में। थोड़े दिन के बाद पिताजी कहते हैं मैं अकेला हो गया हूँ, मैं बीमार रहता हूँ। तो दादी को ऐसे सुना रहा था, दादी तो उसको वहां क्यों बिठाया है, उसको बुला लो, तो उनको भी बुला लिया। तो पिताजी चाचा जी दोनों यहाँ समर्पित हो गए, एक ने लिटरेचर डिपार्टमेंट में सेवा दी, एक ने आवास निवास में दी, और मैं तो बाबा की मूल्यों की सेवा पर था ही। और फिर बाबा बन गया कुलदीपक। गांव वाले जो ज्ञान में चलते थे, कुमार थे, अभी भी हैं, उनको घर दिया, खेती बाड़ी दिया, सब कुछ वही संभालते हैं, घर में पाठशाला चलती है, गांव वाले क्लास करते हैं, जो अनाज मिलता है उसको कभी सरोज दीदी के पास वहां भेजते हैं, कभी बेच करके पैसा यहाँ देके जाते हैं, जो करते हैं, हम कभी जा चले गए तो आधा दिन एक दिन के लिए जाते हैं। तो कहने का भाव है कि जहां हमारा निश्चय है वहां बाबा की मदद, हिम्मत बच्चे की तो मदद बाबा की। ऐसे समय पर हिम्मत की बहुत परीक्षा होती है, लेकिन उन परीक्षाओं में पास होते हैं। तो मैं सुना रहा था दीदी कहानी और सुनने लगे मेरी कहानी। तो दीदी मनमोहिनी बहुत अलर्ट और एक, तो पहला पंत मंत्र पढ़ाया था, आते ही कहा देखना संग की संभाल करना। तो मैं देखते लगा दीदी को क्या कहती, मधुबन में भी संग की संभाल करना। तो समझ गए, इसको प्रश्न उठ गया। कहती है हाँ यहाँ भी संभाल करना कि यहाँ पर भी सब थोड़ी एक जैसे हैं, कई हैं जिनको ज्ञान योग का इंटरेस्ट है, कई हैं जो सेवा करते हैं, भोजन करते हैं, न पढ़ाई पर ध्यान है न योग पर ध्यान है। अगर उनके संग में तुम उठोगे बैठोगे तो उन्नति नहीं होगी, इसलिए संग की जो परहेज करेगा वो यहाँ मधुबन में पास हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बहुत टेंशन गया, और दीदी हमेशा ध्यान खिंचवाती थी जो अमृत वेले नहीं उठते हैं, जो मुरली क्लास नहीं करते हैं, वो केवल सफेद ड्रेस वाले मजदूर यहाँ रहते हैं, सफेद ड्रेस लेते हैं, भोजन करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के संग में नहीं बैठना है। तो दीदी का ध्यान था कि अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना, कभी भी मुरली क्लास मिस नहीं करना। और अमृत वेले कराने के लिए खुद बैठ जाती, हम लोग कभी कभी अलबेले होकर के बीच में उठ जाते, कभी नहीं आते। तो एक बार दादी को बोला, दादी ये खोपों के कमरे में चक्कर लगाओ, ये क्यों उठ जाते हैं बीच में, क्या इनका इतना अर्जेंट काम होता सुबह सुबह। तो हम लोगों का ये लाइट हाउस इधर है, पांच पांच लोग हम यहाँ रहते थे, पांच कमरे हैं, 25 भाई हम रहते थे वहाँ ऊपर। तो दादी और मोहिनी बहन योग में जब हम बीच में कहीं उठ गए तो वो दोनों निकली आप योग से उठ के, बीच में उठी वो भी साथ में, और वहाँ पर सीढ़ी चढ़ने लगी। तो बड़ी युक्ति होती ना माता, जैसे ऐसे घूंघट निकाल लिया कि पहचाने नहीं। तो दादी ने भी घूंघट निकाला, मोहिनी बहन ने भी घूंघट निकाला ऐसे। तो जब चढ़ने लगी तो हम और तीन चार भाई ऊपर ब्रश कर रहे थे, बाहर ही खड़े थे, सोए नहीं थे जाके, लेकिन योग से टूट गए थे। तो बड़ी जोर से चिल्लाए, हमने कहा अरे माताएं ये भाइयों का स्थान इधर नहीं आना, वो बहने का स्थान उधर है। तो दादी ने ऐसे किया, मैं समझ गया चेकिंग शुरू है, आ गई ऊपर, आकर के कहती है कौन कौन सोए हैं सबके नाम नोट करो। सब कमरों में पहले ऐसे खुद झांका और झांक करके पांचों कमरों में सब देखा, और देख के उनको तो पता नहीं किसके क्या चारपाई है, आप लोग लिखो, लिख करके पांचों कमरों में पांच सात लोग सोए थे, पांच सात लोग बाथरूम में होंगे। तो ऐसे करके सबके नाम लेकर के एक सीढ़ी से चढ़ी और दूसरी सीढ़ी से निकल के चली गई। अब चली गई तो हलचल तो हो जाएगी ना, इतना सारा आई है तो सब जग गए, क्या हुआ क्या हुआ, सबको पता चल गया, सबके नाम नोट हो गए। और दादी ने क्या किया, वो चिट्ठी लिख करके दीदी को दे आई, दीदी ये भाई लोग हैं इससे से। दीदी बहुत लौ ला फुल का बहुत बैलेंस था उनका, इसलिए हर चीज में ऐसे प्यार से कान पकड़ना और मीठी मीठी वाणी करके टोली खिलाना। तो जब क्लास पूरा हो गया, सब नाश्ता कर लिया, तो दीदी का अभ्यास था ऑफिस में बैठती थी कमरे में, घंटी रखती थी और घंटी बजाती तो पहरे पर जो भाई होते तो दौड़ के आते, दीदी कुछ काम है, हाँ हाँ जाओ उसको बुला लाओ, उसको बुला लाओ। वो लिस्ट होती सामने, और जिसको बुलाने जाते हो तो अब क्या होगा, कौन सी सजा मिलेगी, पता चल जाता है इसलिए बुलाया है। तो दीदी अपने बाजू में बिठाती, इधर बैठो। सवेरे नाश्ता तो हो गया ना, हाँ दीदी नाश्ता हो गया। मुरली सुनी थी न, किले घूमने गए थे, ऐसे तीन चार प्रश्न पूछ के अमृत वेले क्या होता है, अमृत वेले योग करने के लिए बाबा का वरदानी समय वहां कहाँ थे, क्यों सोए थे, क्यों उठ जाते हो योग से। अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो केवल दो ही तो साधन है, बाकी तो सारा दिन सेवा करते हो। अगर अमृत वेले और मुरली नहीं करते हो तो यहाँ क्यों रहे हुए हो, ऐसे तो नौकर भी काम कर सकते हैं। अगर दीदी ध्यान रखेंगे आगे के लिए, अच्छा आगे के लिए ध्यान रखना ठीक है, कल से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, मुंह में टोली खिलाई जाओ, बस इतना ही कहना, मतलब पूरा प्यार भी देना और एकदम अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम भी बताना। तो ऐसे सब की हाजिरी हुई, उसके बाद सब अलर्ट हो गए। तो दीदी का एक ध्यान था संग पर ध्यान देना, और दूसरी एक शिक्षा बहुत गहरी थी, अगर तुम्हें अपने आप को परिवर्तन करना है तो क्लासेस से या मुरली से इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होगा। आप अपने टीचर अपने आप बनो, अपने को पढ़ाओ, एकांत में बैठो, बातें करो अपने आप से। बाबा ने मुझे क्यों चुना, इतनी सारी दुनिया में से मुझे ढूंढा, मेरे पर विशेष नजर गई, जरूर मैंने कुछ भक्ति काल में उनकी इतनी आराधना पूजा की होगी, कुछ तो किया हुआ जो बाबा ने इतनी दुनिया में से ढूंढ करके मुझे अपना बनाया, और अपना बनाया अपनी छत्र छाया में रखा, इतनी प्यार की पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है। तो अपने से जब पूछोगे, बात करोगे, तो अपने को लगेगा ये कमियां नहीं रहनी चाहिए। कोई संस्कार है तो उसको बदलने का एक तरीका है अपने को खुद पढ़ाना, महसूस करना कि राइट है, ये रॉन्ग है, ये करना ये नहीं करना। तो ऐसे दीदी ने बहुत प्यार से एक एक बच्चे को क्लास नहीं कराई किसी को भी, लेकिन पर्सनल पालना दी। जो भी आए उनको इतनी अच्छा खातरी करना, सौगात देना, उसकी भोजन का, उसकी दिनचर्या पर ध्यान देना। एक भाई बड़े अच्छे वकील थे दिल्ली के, तो वहाँ के जज साहब हमारे ज्ञान में थे, गुप्ता जी, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, लालचंद वत्स, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने। तो वत्स को लेके आ गए ऐसे घुमाने के लिए आबू में। तो लालचंद वत्स थोड़ा रमणीक थे बहुत, और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, प्रश्न तो होते ही उनके ढेर सारे। तो 5-6 दिन रहे और लास्ट में वो जज साहब दीदी से मिलाने के लिए ले आए। तो दीदी ने पूछा, वकील साहब कैसे लगा? तो वकील साहब तो मजाक में बोलते हैं, दीदी ऐसे तो कभी ससुराल में भी पालना नहीं मिली। इतना प्यार मिला, इतनी पालना मिली, इतनी खातरी सभी ने की, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो दीदी कहती, अच्छा इतना सब प्राप्ति हुई है, तुम क्या देगा रिटर्न में? तो उन्होंने, उसने सोचा कि कोई सहयोग मांगेंगे, भाई कोई केस होगा या कोई बात होगी, कोई धन चाहिए, कोई सेंटर चाहिए। दीदी जो मांगेंगे हम आपको देंगे। बोला, सच बोल रहा है? दीदी ऐसे बोलते, सच बोल रहा है, देगा? वकील लोग सच नहीं बोलते हैं, तुम बोल, देगा? हाँ दीदी, जो कहोगी देगा। 2-3 बार बाप दीदी ने उसे कहलवा लिया। कहलवाने के बाद बोलती है, बोला, बिल्कुल दीदी, जो कहोगे देंगे। अच्छा, 5 खोटे पैसे चाहिए। कहता, खोटे पैसे क्या करेंगे दीदी, खोटे पैसे चलते ही नहीं है। बोले, तुम दोगे? हाँ तो करो, फिर बताती हूँ मैं। तो बेचारा पहले तो मूंज गया, 5 खोटे पैसे क्या होते हैं। फिर दीदी ने कहा, 1 खोटे पैसे तुम्हारे पास हैं, मुझे पता है। नहीं नहीं दीदी, मेरे पास नहीं है। अरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, खोटे पैसे लेके घूमता है तुम, ये मुझे दे सकते हो? बंद गया बेचारा। ठीक है दीदी, जो आप कहती हो। और दूसरी चीज क्या? फिर कहती, 1 आना चाहिए, 1 आना। अब 1 आना, उस समय आना तो बंद हो गया था, 16 आने का 1 रुपया होता था ना, हम लोगों के बचपन में यही चलता था, 16 आने का 1 रुपया। तो 1 आना जब दीदी ने माँ बोला तो हंसने लगा, कहता, दीदी 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 बोलो ना, क्या 1 आना बोल रही हो? बोला, मैं जो बोल रही हूँ वो चाहिए मुझे, वो देना है तो बता। तो पहले तो सोचने लगा क्या है, कहती, 1 बार सेंटर पर रोज आना, 1 बार सेंटर पर रोज आना, 1 आना बस। बेचारा इतना बड़ा वकील फंस गया दीदी के चक्कर में। जी दीदी, बस जी दीदी कहा, और दीदी ने उसको रेगुलर स्टूडेंट बना दिया। रोज पांडव भवन में कितना भी बिजी हो, 1 दिन भी उसने मुरली मिस नहीं की, 1 दिन भी सेंटर की हाजिरी मिस नहीं की। 1 बार उसके संबंधी, कोई नजदीक का संबंधी शरीर छोड़ा था, सारे घर वाले, गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, लेकिन उसको ये ध्यान था मेरा वचन झूठा न जाए, इसलिए वो भी छोड़ करके आया। 10 मिनट बाबा कमरे में बैठा, मुरली का सार नोट करता था डायरी में, कि पूछेंगे कभी तो डेट वाइज मुरली नोट होती थी उसकी डायरी में, जब आता तो दीदी को दिखाता था। धीरे धीरे वो आत्मा सरेंडर हो गई, यज्ञ में आ गई। और बहुत बड़ा केस पहला हमारा जीता, जो रजौरी गार्डन का मकान था, बाबा की साकार की नजरों से वो बाबा की नजर पड़ी थी, ये स्थान चाहिए। और उस समय वहां पर रिंग रोड बनने वाली थी, इंदिरा गांधी जी ने रिंग रोड वहां से निकाली। उस समय यहाँ स्टे लिया गया कि नहीं, ये स्थान बाबा को चाहिए। रिंग रोड का स्थान तो चेंज हो गया, आगे कर दी गई, मायापुरी चौक है ना वहां से, लेकिन स्थान नहीं मिल रहा था। फिर भी केस ही चल रहा था और गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे। तो ये आए सुप्रीम कोर्ट के वकील और इन्होंने उस केस को जीत लिया, फिर वो रजौरी गार्डन का स्थान बना। उसके बाद धीरे धीरे मधुबन में आए, सारे जितनी भी लीगल डिपार्टमेंट थी उन्होंने संभाला। सुखधाम में दीदी ने उनको कमरा दिया, अलग से ऑफिस दिया और यहीं रहे। और उसके बाद वो शरीर छोड़ा। मतलब दीदी की परखने की शक्ति, किसी को समर्पित कराने की शक्ति, बहुत सारी विशेषताएं थी। और योग की शक्ति तो इतनी थी, ऐसे दृष्टि अगर दे दिया, कितने विदेशियों को सतयुग के साक्षात्कार हो जाते थे। इस दुनिया से गुम हो जाना, शरीर से गुम हो जाना, ये बहुत अच्छा अभ्यास था। और अंतिम समय में दीदी ने एक मंत्र पक्का कर लिया, अब घर जाना है, अब घर जाना है। सब बातों से उपराम, मैं कभी ले जाऊं दीदी, ये पत्र आया, इसका जवाब देना है, क्योंकि बहुत हमारी आपस में यही लेन देन होती थी रोज। पहले मैं प्रश्न उत्तर टाइप करूं, दीदी सब पत्रों के उत्तर देती थी, फिर उत्तर देने भी हमें साथ में बिठा लेती कि इसका उत्तर लिखो, इसका उत्तर लिखो। तो जब भी पूछो कोई बात, अरे छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो एक दिन बाथरूम में थोड़ा सा चक्कर आया और चोट लगी ऐसे यहां पर माथे पर। तो उस दिन योग कराने नहीं आई। जब योग कराने नहीं आई तो दादी को संकल्प चले कि दीदी रोज योग कराने आती, आज क्या हो गया। तो जब आई तो लेटी हुई थी बिस्तर पर, डॉक्टर भी आए हुए थे, दादी को नहीं बताया था। दादी ने देखा, क्या हुआ दीदी, ऐसे मैं बाथरूम में गई थी और मेरे को थोड़ा चक्कर आया, तो थोड़ा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इसको चेक कराना चाहिए, बड़ी उम्र हो रही है, शायद आंखों की कमजोरी होगी, आंखों की चेकिंग कराएं। तो चेकिंग कराने के लिए बॉम्बे भेजा। बॉम्बे में चेकिंग होते होते एक छोटी सी गांठ यहाँ ब्रेन पर दिखाई दी डॉक्टर्स को। तो कहा एक छोटा सा ऑपरेशन है, ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन कर देंगे, आईज ठीक हो जाएंगे, आंखें ठीक हो जाएंगे। तो सभी ने सोचा, बात डॉक्टर तो इतना सरल रीति से बोला, ठीक है भले करो। बाबा को भी पता था, दीदी को भी पता था, अब ये जाने वाली हैं, घर जाना है, घर जाना है। तो बाबा वहां विदाई देने के लिए बॉम्बे में भी आए, गुजरात दादी में, लास्ट में भी मिलके दीदी बाबा से छुट्टी लेके हॉस्पिटल में गई। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद 17-18 दिन कोमा में ही रही, आंख खोलती बंद कर लेती, खोलती बंद कर लेती। और 28 जुलाई को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ा तो ब्राह्मणों में तो बहुत जल्दी हलचल होते ना, क्वेश्चन उठते हैं, डॉक्टर ने बताया नहीं, डॉक्टर ने ये किया, वो किया, ऐसा किया। तो बाबा को शाम को भोग संस्कार के बाद, 30 जुलाई को संस्कार हुआ, यही हुआ माउंट आबू में। तो बाबा बाद में आते हैं, भोग लगता है। तो बाबा आए 30 जुलाई को और बाबा ने मुरली चलाई, कहा बच्चे डॉक्टर को दोष देते हैं, लेकिन बाबा बच्चों को कहता है न इसमें भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। डॉक्टर का नाम भगवती था, न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। ये तो बाबा को बच्ची को एडवांस पार्टी में भेजना था, इसलिए आप लोग संकल्प नहीं चलाओ, जो हुआ उसमें कल्याण है। आपकी भी दीदी प्यारी थी और बाबा को सेवा के लिए दीदी को दे जाना था, इसलिए कोई संकल्प चलाने की जरूरत। बहुत अच्छी मुरली चली, वो तो आप लोगों के पास होगी। तो ऐसे दीदी ने बहुत वंडरफुल पार्ट यज्ञ में बजाए। और दादी जी जब साथ में मिली बाबा के अव्यक्त होने के बाद, बाबा जब 69 में अव्यक्त हुए हैं तो दादी सामने थी, दीदी को तो बाबा ने सेवा पर भेज दिया था। दादी आई थी पार्टी लेके, बाबा ने कहा बच्ची तुम रुक जाओ, बाबा को तो पता था विदाई लेनी है। तो दादी के हाथ में हाथ देके बाबा व्यक्त हुए, और 21 तारीख को जब बाबा गुलजार दादी के तन में प्रवेश हुए, तब दीदी और दादी को कलश रख करके निमित्त बनाया। और फिर दीदी दादी ने मिल करके जो बाबा के साकार के संकल्प थे वो सब पूरे करने हैं, सबको संगठित किया, सबको साथ लिया, और जो बाबा ने कहा विदेश में जाएंगे, ये सेंटर्स खोलेंगे, ऐसे स्थान बनेंगे, सब सेवाएं शुरू कराई। फिर ये ग्रुप बढ़े, बाबा के समय तो बहुत थोड़े बच्चे, मैं जब आया हूँ तो 30-40 भाई बहने थे, छोटा सा स्थान था। अगर 100 लोग आ जाते तो हमारे लिए न सोने का जगह होता था न क्लास की जगह होती, वही हिस्ट्री हाल छोटा बन गया था। लेकिन उसके बाद ये सब मेडिटेशन हॉल बना, वृद्धि हुई, बहुत कुछ हुआ, और दीदी ने सब पार्ट बजाते हुए बहुत अच्छी इकोनॉमी का पार्ट पढ़ाया, कैसे एक एक पैसे को बचाना है, एक भी रुपया अपने लिए व्यर्थ नहीं खर्च करना, एक रुपया तो छोड़ो चार आने भी नहीं खर्च करना। इतना दीदी का सबके ऊपर ध्यान रहता था, कुछ भी चाहिए तो यज्ञ देगा, मना कोई को नहीं है कोई चीज के लिए, लेकिन कोई खुद जाके प्राइवेट पैसा नहीं रख सकता, कुछ नहीं खरीद सकता, इकोनॉमी है तो बहुत इकोनॉमी से परिवार की पालना की। एक दिन क्या हुआ, हम लोगों को पता था हमारे भाइयों में से कोई कुछ केला ले आया, केला खाने के लिए, वो केला खाएगा तो छिलका तो डालेगा ना कहीं, तो डस्टबिन में छिलका पड़ा था, वो सफाई कराने वाली एक बहन थी, वो छिलका उठा के दीदी के पास चली गई। दीदी ये जो पांडव भाई लोग रहते ना इधर, ये केले खाते हैं चिप चिप करके। वो दीदी तो क्लास बुला लिया, बुलाओ सबको, किसने केला मंगाया, कहाँ से मंगाया, किसके किसके पास पैसे हैं, कितने पैसे रखे हैं, सब बताओ, लिखत में दो। आप लोगों को यज्ञ केला नहीं देता क्या, बाजार से क्यों लाए, आप चिटकी डालते आपको केला मिल जाता, बाहर से नहीं लाना है। बहुत इकोनॉमी, और इतनी इकोनॉमी में यज्ञ को चलाना, और उसमें भी दादी बड़ी फ्राक दिल और दीदी एकदम फुल इकोनॉमी, एक रुपया भी नहीं जाना चाहिए। दादी 77 में विदेश गई, पूरा वर्ल्ड टूर किया, वर्ल्ड टूर करके आई तो दीदी को कहती है दादी मेरी दिल है, मैं मधुबन वालों को कोई सौगात दूं, क्या देंगी। बोला एक एक तेरी काट के ड्रेस देनी है। दादी ने कहा तेरी काट की ड्रेस देनी, तेरी काट की ड्रेस, कुर्ता पजामा, बहनों को साड़ी दे देंगे तेरी काट। तो दीदी ने इतना आंख दिखाई दादी को, अरे क्या हो गया आपको, तेरी काट की ड्रेस पहनाएंगे इनको, देहमान आएगा इनको पहनेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। दादी कहती दीदी इतनी टूर करके आए हैं, इनको कुछ तो सौगात देनी चाहिए। अच्छा तेरी दिल है ना, तो ऐसा करो कुर्ता तेरी काट के दे तो पैजामा सूती दे। तो सूती पजामा और टेरी काट के ड्रेस मिली, दिया। अब चालाक होशियार भाई बहने थे, अपना आपस में बदल लिया। मना कि इतना ध्यान कि कहीं भी इनको शौक मौज का ऐसा नहीं फैशन करना शुरू कर दें, काम न करें, और सब काम तो कर्मणा ही थे ना, ये तो आज की जैसी जनरेशन थोड़ी साइंस ही नहीं थी हमारे पास, धोबी घाट हम उस पर करते थे पाटे पर, सबके कपड़े लेके भट्टी जलाना, गर्म करना, रात भर उसको पकाना और सुबह चटका लगाना, और उसके बाद चूल्हों पर रोटियां, और उस समय गीली गीली लकड़ियां होती थी, आई गली वो चला रहे हैं हम लोग, धुआं खा रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, 500 रोटी बननी है, 1000 रोटी बननी है, और भोली दादी इतना प्यार कर, अरे लाल आटा गूंद दे चल के, बड़े प्यार से। और फिर अगर आटा हमने गूंद के दे दिया तो इतना मक्खन लेके आएगी, ये मक्खन ले जाना, मक्खन खाना जाएगा, खातरी भी करती थी। तो भोली दादी हमारी बहुत बहुत लव, बहुत प्यार, माँ का प्यार दे करके हम लोगों को सब काम करा लेती थी, कोई छोटा मोटा काम भंडारे का हो सब करा लेते थे। तो ऐसे करके यज्ञ क्या था तो, लेकिन दीदी का अव्यक्त होना सारा ही यज्ञ बदल गया। सब कर्मणा सेवाएं पूरी हो गई। जो हम धोबी घाट करते थे उसके पते धोबी घाट की मशीनें आ गई। जो रोटियां चूल्हे पर बनती थी उसके बाद स्टीम आ गई। जो हम एक जगह पानी गर्म करके सबको बाल्टियों में पहुंचाते थे वहां पर बॉयलर लग गए, रनिंग वाटर आ गया। मतलब ऐसा पलटा 83 कॉन्फ्रेंस के बाद, ओम शांति भवन के बाद, सब देश विदेश बाबा के अनेकानेक बच्चे आए। वही साल था जो हम लोगों ने पूरा आबू बुक किया था, एक भी चारपाई बाहर वाले को नहीं मिलेगी, सब ब्रह्मा कुमारीज के। क्योंकि ओम शांति भवन में 3,000 लोग बैठेंगे और यहाँ रहने की व्यवस्था 300 की, तो 3,000-4,000 आएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो दादी ने कहा जितने आबू में होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, जहां पर एकोमोडेशन हो सकता है सब बुक कर दो। सब ले लिया और बुक करके सबको वहां रखा। रखा तो ऐसे क्या बताऊं, रखना तो बड़ा मुश्किल का काम था। अच्छे लोग आए उनको अगर होटल में ले जाए, मंदिरों में ले जाए, तो रोए कि हमको मधुबन में रखो, कहीं नीचे सुला दो, जगह नहीं है। कैसे भी करके कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, बड़ा धूमधाम से, ऐसा लगा जैसे बाबा प्रत्यक्ष हो गया। टीवी पर, रेडियो पर, इतने बड़े बड़े VIP जाए, बहुत सेवा हुई। और जब पूरा हिसाब करने गए तो होटलों का खर्चा जितना था दे करके सब आए। हम लोग जाते थे सबका हिसाब करने, तो लास्ट में दादी ने क्लास कराया, कहती है ऐसे करके पीछे, ये जो बूढ़ा बाबा है ना, ये बड़ा चतुर है। तो हम लोगों ने कहा दादी क्या चतुराई किया, कहती है तुम लोग जितना खर्चा किया ना उतना ही भंडारी में आया, एक रुपया कम नहीं, एक रुपया ज्यादा नहीं। ऐसा ये बाबा है। ये बाबा का कार्य करण करावन हार का कार्य बड़ा गुप्त है, करा रहा है लेकिन कोई को दिखता ही नहीं कौन करा रहा है। ये सत्यनारायण स्वामी की दरबार है। सत्यनारायण स्वामी तो यही है ना, अगर झूठ बोल दिया तो क्या होगा। एक व्यापारी कहते बहुत अच्छी कमाई करके विदेश से हीरे जवाहरात भर के आ रहा था नाव में, तो सत्यनारायण स्वामी उसकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए बूढ़ा वेश बना करके। अब उसने देखा है पता नहीं कौन बूढ़ा, कहता अरे बाबू इसमें क्या है नाव में। बोला लत्ता पत्ता है। कहा तथास्तु। तथास्तु कहा और सब मिट्टी धूल हो गया, लत्ता पत्ता बन गया। अब बेचारा पश्चाताप करने लगा, उसने पहचाना नहीं है तो सत्यनारायण स्वामी जी है, बन गया। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहता है बच्चे जो हो जैसे हो, कभी झूठ नहीं बोलना, मेरे पास कुछ नहीं है। कई बोलते तो मेरे पास कुछ नहीं है, और बाबा ने कह दिया तथास्तु। तो क्या होगा है? बाबा के आगे झूठ बोलना, वो तो सत्यनारायण स्वामी बैठा ना सामने। इसलिए कभी भी बाबा मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर ऐसे कह दिया तो क्या होगा। तो ऐसा न हो फिर बाबा कहते तथास्तु। इसलिए ठीक है, जो हूँ जैसा हूँ तेरा हूँ, बाबा तेरा ही तो सब कुछ है दिया हुआ। बहुत सच्ची दिल पर साहेब राजी, तो बाबा को अच्छी तरह से राजी कर लो हूँ सच्चाई से। भोले बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, सच्चे बच्चे प्यारे लगते हैं। भोला नाथ कहता है भोलों का मैं नाथ हूँ, मैं भोला नहीं हूँ, मैं तो चतुर सुजान हूँ। तो बाबा को बहुत सच्चे दिल से, भोलेपन से, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, कहाँ से कहाँ पहुँचा है यज्ञ को। हम लोग देखते हैं 54 साल का इतिहास हमारे सामने है, 54 ईयर्स का इतिहास है। एक एक साल में एक एक बिल्डिंग बनते 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 आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और दादियों ने कितना त्याग तपस्या सेवा करके बाबा के कार्य को इतना बड़ा रूप दिया है। अभी वो सब एडवांस पार्टी में गए, संभालेगा कौन। बाबा के बच्चे निमित्त बन करके अब बाबा के रहे हुए कार्य को संपन्न करेंगे। संपन्नता के लिए बाबा कहता है बाबा की प्रत्यक्षता का केवल एक आधार है आप बच्चों की श्रेष्ठ जीवन। जो कुछ बाबा ने पढ़ाया है, जो कुछ सिखाया है, वो हमारी जीवन से दिखाई दे। ऐसे न कहें कहते कुछ करते कुछ। जैसे बाबा की कथनी करनी रहनी समान थी, ऐसे हम सब बच्चों के अंदर से आए जो कुछ हम दूसरों को कहते हैं वो मुझे करना है, जो करना है वही कहना है वही सोचना है। और ऐसे जीवन अगर है तो बाबा की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी, तो सभी शांत स्वरूप हो ना। शांति हमारा स्वधर्म है, शांत स्वरूप स्थिति है, शांति के सागर में ऐसे खो जाओ। तो अभी हम 7:30 तक ही उपकरण करना में।